उसमें से पांच अणुव्रतों के पांच पांच अतिचार, 25 अतिचारों के बारे में आपने जाना। अब आगे तीन गुण व्रत हैं, उनके बारे में जानेंगे। मंगलाचरण के साथ प्रारंभ करती हूँ छह ढाला का स्वाध्याय। तीन भुवन में सार बीत रागे विज्ञान था, शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान का स्वरूप जो अपनी आत्मा है, और तीनों लोकों में सारभूत जो अनंत ज्ञान रूप वीतराग विज्ञान का, प्रत्येक प्राणी की आत्मा में छिपी हुई है, भरी हुई है, जो मोक्ष को प्रदान करने वाली है। ऐसे वीतराग विज्ञानता को और भगवान परमात्मा को नमन करके, और पंडित दौलत राम जी ने छह ढाला के अंदर चारों गतियों के दुखों का वर्णन किया है। उन दुखों का प्रमुख कारण मिथ्यात्व बताया कि जो अनादिकालीन प्रवृत्ति के अनुसार ये जीव सम्यक रूप से भगवान के कहे हुए तत्वों पर श्रद्धा न करके अपनी श्रद्धा को उल्टी किए हुए है, अर्थात मिथ्यात्व के अंदर जी रहा है। उस मिथ्यात्व का इतना सुंदर वर्णन किया है कि कोई भी उनका वर्णन पढ़ करके, सुन करके, और उसको निश्चित रूप से अपने जीवन से हटा सकता है और सम्यक्त की ओर पढ़ने की तैयारी करते हैं। तीसरी ढाल के अंदर आत्मा के हित का, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का वर्णन किया। सम्यक ज्ञान का अच्छे से वर्णन, विस्तृत वर्णन चौथी ढाल में, और सम्यक चारित्र का वर्णन किया है। सम्यक चारित्र के अंतर्गत ही देश चारित्र और सकल चारित्र को बताएं। देश चारित्र, घर में रहते हुए श्रावक श्राविकाएं भी धारण करके पालन कर सकते हैं और अपने को मोक्ष मार्गी बना सकते हैं। सकल चारित्र धारण करने वाले मुनि और आरिकाएं होते हैं। तो देश चारित्र में जो प्रारंभ किया 12 व्रतों से, उनमें आप तीन गुण व्रत के अतिचारों की ओर चलती हैं। आपने जान लिया है अतिचार क्या है। व्रतों का एक देश भंग हो जाना, अर्थात व्रतों में दोष लग जाना, यह अतिचार है, जिनकी शुद्धि प्रायश्चित आदि से की जाती है। तो गुण व्रत के तीन भेद बताए थे, दिग व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड विरति व्रत। तो दिग व्रत के पांच अतिचार, दिग माने दिशा, दिशाओं का प्रमाण करके उनका उल्लंघन ना करके अपना जीवन यापन करना, एक दिग व्रत है। उसमें पांच अतिचार संभावित रहते हैं, उनके बारे में जानना है। नंबर एक है ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम, तिर्यक व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि, और पांचवा नंबर स्मृत्यंतराधान। इन्हें दिशाओं में ही ये प्रमाण होते हैं और उनका उल्लंघन करना ये अतिचार है। तो प्रमाण से अधिक ऊंचाई वाले पर्वत आदि पर चढ़ना ऊर्ध्व व्यतिक्रम है। प्रमाण से अधिक नीचाई वाले कुएं, खाई या किसी पत्थर की खान वगैरह में उतरना अधो व्यतिक्रम है। समान स्थान में प्रमाण से अधिक लंबे जाना तिर्यक व्यतिक्रम है, जो सामने रहते हुए और पृथ्वी पर ही इधर उधर जाने की दिशाओं में वृद्धि कर लेते हैं, वह तिर्यक व्यतिक्रम। प्रमाण किए हुए क्षेत्र को बढ़ा लेना क्षेत्र वृद्धि है, यानी नियम सोच समझ के ही लेना चाहिए और फिर उसको बढ़ाना नहीं चाहिए, और अगर बढ़ा लिया है तो वो क्षेत्र वृद्धि व्यतिक्रम है, अतिचार है। और किए हुए प्रमाण को भूल जाना स्मृत्यंतराधान है। इसलिए व्रतों को लेने में ध्यान रखना नंबर एक तो गुरु से लिए जाते हैं, नंबर दो अपनी डायरी में नोट करके जरूर रखना कि हमने ये व्रत इस तारीख में लिया। तो ये हुआ दिग व्रत के 5 अति 4। अब देश व्रत आता है गुण व्रतों में, दूसरा है देश व्रत। देश व्रत के भी 5 अति 4। देखो क्या है, इनको सुनना जानना आपको आवश्यक है। वर्तमान में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनको हम टाल ही नहीं पाते हैं, लेकिन आप ये समझ के चलना कि अगर ये अतिचार लग भी जाते हैं, कुछ दोष भी लग जाते हैं, तो भी व्रतों का पालन जरूर करना, क्योंकि आज का युग आधुनिक युग है। पहले लोग थोड़ा बहुत इस पर्वत तक जाएंगे, इतनी ऊंचाई तक, आज हवाई यात्राएं हैं जो हजारों किलोमीटर ऊंचाई पर चलते हैं, तो उस प्रकार के नियम लिए जाते हैं। आप देश व्रत के अतिचार समझिएगा कि आनयन, प्रेष्य प्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात और पुद्गलक क्षेप, ये 5 अतिचार हैं। तो मर्यादा से बाहर की वस्तु मंगाना आनयन नाम का अतिचार है, और मर्यादा से बाहर नौकर आदि को भेज करके भेजना प्रेष्य प्रयोग की मैं नहीं जा रहा हूं, चलो तुम काम करके आ जाना, प्रेष्य प्रयोग है। सीमा से बाहर वाले मनुष्यों को खांसी आदि शब्द द्वारा अपना अभिप्राय समझा देना शब्दानुवाद शब्दानुपात है। ये तो आजकल व्हाट्सएप से, फोन से न जाने कितने होते हैं, लेकिन फिर उसको पढ़ा करके अपनी सीमाएं करना। मर्यादा से बाहर रहने वाले मनुष्यों को अपना रूप दिखाकर अर्थात नेत्र आदि का इशारा करके अपना अभिप्राय समझा देना रूपानुपात, ये देश व्रत का अतिचार है। 5वां अतिचार जो पुद्गलक क्षेप है, मर्यादा से बाहर कंकर पत्थर आदि फेंक कर अपना अभिप्राय समझा देना पुद्गलक क्षेप है। अब इन व्रतों को सुनकर के आप तो सोचेंगे अतिचारों को कि तो हम धारण ही नहीं कर सकते। कर सकते हैं, अब अपनी मर्यादाओं को आज के अनुसार करना, लिमिट करना है। क्या इतने देशों तक व्यापार करेंगे या 4-5 देशों का ही खुला कर लिया, ताकि जब भी किसी देश से कोई व्यापार की जाने आने की प्रक्रिया हो तो उसमें अपने को दोष ना लगने पाए। देश व्रत के बाद आता है अनर्थ दंड विरति व्रत, उसके भी 5 अतिचार होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक कंदर्प, नंबर दो कौतकुच्य, नंबर तीन मौखर्य, नंबर चार असमीक्षाधिकरण और नंबर 5 उपभोग परिभोगानर्थक्य। बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से हमारे आचार्यों ने इन ग्रंथों का शावकाचार, मूलाचार, इन सागार धर्मामृत आदि ग्रंथों के अंदर वर्णन किया है इतनी सूक्ष्मता कि भावों से भी हमें दोष न लगने पाए, इसलिए इन सब चीजों को बताते हैं। आज अपने जैन धर्म से बहिर्भूत लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि अतिचार भी कोई चीज होती है, व्रत भी कोई चीज होते हैं, उनमें दोष भी लगते हैं। जब कोई व्रत ही नहीं जानते तो दोष की बात ही नहीं आती, उनके तो अनाचार ही अनाचार रहता है, यानी पाप ही पाप रहता है। जो पुण्य करने की ओर अग्रसर होते हैं, व्रतों को पालन करते हैं, तो उनके ही अतिचार लगते हैं। जैसे कोई साइकिल चलाना सीखता है, गाड़ी चलाना सीखता है, एक्सीडेंट भी होता है, चोटें भी आती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर उसको सीखते ही नहीं है। सीखते हैं और फिर चोट आती है, मलहम पट्टी करवाते हैं, फिर से चलते हैं। ऐसे ही व्रतों का है। आपके बच्चे जब छोटा छोटा नियम लेते हैं, मान लीजिए किसी ने लिया कि गर्मी की छुट्टी में हम रात में भोजन नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा घर में ही रहते हैं, या कुछ दिन के लिए जंक फूड नहीं खाएंगे, फास्ट फूड का नियम ले लेते हैं, तो आप उनको रोकिए मत, उनको नियम लेने दीजिए, ताकि बच्चों में नियम लेने की एक भावना बनी रहे कि हमारे गुरु लोग इतने कठिन नियम पालन करते हैं और हमें छोटे छोटे नियमों का पालन करने के लिए कहते हैं। अगर उसमें कोई दोष भी लगते हैं तो आप उसका प्रायश्चित दिलाने की कोशिश करें। अब आइसक्रीम वगैरह है, पिज्जा बर्गर, आजकल बच्चे बहुत चाउमीन वगैरह खाते हैं, इनको भी कम से कम अष्टमी चतुर्दशी के दिन त्याग करवाया कीजिए। मेरा प्रकरण तो चल रहा है गुण व्रत की ओर, जो ऊंची श्रेणी में जा करके आप जैसे लोगों के लिए आते हैं। लेकिन बच्चों को भी अष्टमूल गुण की प्रेरणा हमेशा देना ही चाहिए। तो अनर्थ दंड की बैठे बैठे बिना मतलब के मन के द्वारा अनर्थ दंड वगैरह करते रहते हैं, तो शरीर से हास्य सहित, राग से हास्य सहित अशिष्ट वचन बोलना ये कंदर्प है। बड़ा सहज है कि लोग किसी को दूसरे को समझते ही नहीं कुछ, न त्वाम अहम तृणम मन्ये। अपने अंदर इतना अभिमान है कि हंसते हुए भी किसी का अपमान कर देते हैं, वचन ऐसे बोल देते हैं अशिष्ट वचन। तो ये कंदर्प नाम का अतिचार है या अनर्थ दंड है कि उसको बोले बिना रह सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं कि चलो धर्म के मामले में, गुरु के मामले में, परिवार की सुरक्षा के मामले में, या कोई व्यापार आदि है तो उसमें धन कमाने में आपको जरूरी होता है झूठ बोलना लाजमी रहता है। लेकिन कुछ लोगों की झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है तो छोटी छोटी बातों में ही झूठ बोलने लगते हैं। हंसी में भी किसी को भी अशिष्ट वचन कह देंगे। दूसरा है शरीर से कुचेष्टा करते हुए अशिष्ट वचन बोलना, बहुत कुछ है, सब वचनों का ही है। इसमें दृष्टता पूर्वक आवश्यकता से अधिक बोलना मौखर है, समझ नहीं पाते लोग, और कोई भी बात करें बीच बीच में बोले जा रहे हैं, आवश्यकता से अधिक बोले जा रहे हैं। वचनों को बहुत तोल करके बोलना चाहिए, और जहां उन वचनों की वैल्यू हो, जहां उन वचनों की जरूरत हो, वही बोलना। कम से कम जब कोई बड़े लोग बात कर रहे हो तो उसके बीच में कभी भी नहीं बोलना चाहिए। और चौथा कहा कि उपभोग बिना प्रयोजन के मन वचन काय की अधिक प्रवृत्ति करना असमीक्षाधिकरण है। अब देखो मन को भी चलाते रहते हैं कि इसका किसी तरह हित हो जाए, या कुछ भी ऐसे मन के अंदर कटु विचार लाते हैं, वचनों से बोलने लगते हैं, काय से ऐसी प्रवृत्ति करते हैं कि इसको दुख हो, इसको कष्ट हो और इसका अपमान हो जाए। तो ये असमीक्षाधिकरण है। अब भोग उपभोग के पदार्थों का आवश्यकता से अधिक संग्रह करना उपभोग परिभोगानर्थक है, यानी अनर्थ होने की जिनमें संभावना रहती है। अनर्थ माने कि बिना मतलब हिंसा का पाप लग रहा है, बिना मतलब जब थोड़े सामान से अपना काम चल रहा है तो भी परिग्रह इकट्ठा कर रहे हैं। भोग परिभोग की चीजों को लेकिन लालच रहता है, इसमें वृद्धता रहती है, मूर्छा रहती है, नहीं होते हुए भी लेने की भावना रहती है। आवश्यकता से अधिक संग्रह करना उपभोग परिभोगानर्थक है। उपभोग परिभोग की वस्तुएं लीजिए, ऐसा नहीं है कि नहीं लेना है, लेकिन आवश्यकता से अधिक संग्रह करने में उनका अनर्थ होने की यानी पाप संचित होने की संभावना रहती है, इसलिए इनको अतिचार के रूप में बताया। अब आएंगे शिक्षा व्रत के पांच अतिचार हैं। शिक्षा व्रत कितने होते हैं? चार। पांच अणुव्रत, तीन गुण व्रत और चार शिक्षा व्रत। तो चार शिक्षा व्रतों के भी पांच अतिचार हैं, और उन अतिचारों को के बारे में मैं कल आपको ले चलूंगी। आज आपको इतना जानना है कि सबसे प्रारंभ में महामंत्र नमोकार का स्मरण करते हुए अष्टमूल गुणों का पालन करना। अष्टमूल गुण मद्यमांस मधु का त्याग, ये तीन मकार कहलाते हैं। इनके प्रारंभ में मा शब्द है, मध्य मांस और मधु, तो इसलिए इनको कहते हैं तीन मकार। मा से शुरुआत होती है। इन तीनों में त्रस हिंसा का घात होता है। शराब कहीं पीना नहीं, कभी भी दोस्तों की संगति आने पर भी बच्चों के अंदर संस्कार डालना है। आपको ना अंग्रेजी शराब पीनी है और ना देसी शराब। आज कोकटेल पार्टी विवाह शादियों के अंदर चलने लगी हैं, खुलेआम, और उसको मोस्ट मॉडर्न मैरिज कहा जाता है। लेकिन आपको ये जानना है कि मॉडर्न होकर के भी कम से कम हम अपने सिद्धांतों का हनन ना होने दें। कितने ही लोग आते हैं, बताते हैं हम लोगों से जो निकट से जुड़े हुए हैं कि माता जी अगर 10 कार्ड शादी के आते हैं तो 8 के अंदर ये लिखा रहता है, और युवा वर्ग इसको अच्छा मानते हैं और ये मानते हैं कि हम आज के मॉडर्न युग में जी रहे हैं। मॉडर्न युग का मतलब ये नहीं है कि आप अपने सिद्धांतों को खत्म कर दें या अपनी आत्मा का अपने आचरण से घात करने लग जाएं। आप स्वयं पीते हैं और पार्टी के नाम पर शादी में सैकड़ों हजारों लोगों को पिलाते हैं, कितना पाप आपने अर्जित किया। ऐसे ही जाने अनजाने में जो वस्तुएं होती हैं उनके अंदर जो मांसाहार का अंश भी लगता है तो वो खाने में दोष लगता है। एक हमने चीज पढ़ी, अच्छी लगी, कि अगर आप प्योर शाकाहारी हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं, ऐसी जगह कभी भी ना जाएं कोई पार्टी करने के लिए जहां वेज नॉन वेज दोनों लिखा हो। या आपकी भ्रांति है क्या, अगर वेज के टेबल पे बैठेंगे तो हमारे पर वेजिटेरियन ही चीज आएगी? ये भ्रांति है। जिन लोगों ने होटल के अंदर रह करके काम किया है या नजदीकी से देखते हैं, वहां कोई परहेज नहीं रहता। आप समझ के चलो कि जहां नॉन वेज बनता भी है, चाहे उसकी किचन बिल्कुल अलग है, लेकिन उसकी वस्तुएं सब मिल जाती हैं। तो वेज नॉन वेज का बिल्कुल, आप एक होटल के अंदर या एक जगह के अंदर चाहें तो वेजिटेरियन आप रह ही नहीं सकते। इसलिए अपने शाकाहार व्रत को पालन करने के लिए अगर कहीं बाहर भी जाते हैं तो वेजिटेबल फूड फूड ही लें। देखो, जैन फूड आज हवाई जहाज के अंदर भी दिया जाता है, तो जैन फूड कहते हैं। वेजिटेरियन फूड को जैन फूड कहा जाता है। तो जैन का इतना महत्व है, लोगों के मन के अंदर धारणा रहती है कि जैन लोग कभी भी मांसाहार नहीं करेंगे, वे शुद्ध भोजन करते हैं। इसलिए अपने आचरण को जैनत्व के अनुकूल ही रखना। दिल्ली के अंदर एक डॉक्टर कैलाश चंद्र जैन थे, राजा ट्वाइस, जो जम्बूद्वीप के प्रथम अध्यक्ष बने हैं और ज्ञानमती माता के अनन्य भक्त थे। उन्होंने एक बार अपना अनुभव सुनाया कि माताजी, मैं विदेश में व्यापार के लिए जाया करता था और बहुत सारे लोगों के साथ हमारी मीटिंग चलती थी। मैं अपने गिलास के साथ में एक छन्ना ले जाता था, जो पानी आता तो उसको छान करके उसी गिलास दूसरे गिलास में और फिर पिया करता था। अंग्रेज लोग देखते थे तो कहते थे, जैन साहब हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि जब पानी आया और मैंने नहीं छाना, सोचा कि चलो मीटिंग चल रही है जल्दी से, तो पड़ोस के अमेरिकन ने तुरंत टोका, जैन साहब, व्हाट आर यू डूइंग, आप ये क्या कर रहे हैं, आप रोजाना पानी छानते थे, आज क्यों नहीं छान रहे हैं? उन्होंने आके बताया कि माता जी, मेरी उस बात का उन्होंने इतना अच्छा कोट किया कि नहीं पीते हैं पानी बिना छाने, आप कैसे पी रहे हैं? तो मुझे संबोधित किया, यानी अपनी संस्कृति, अपना आचरण, अपना विचार, अपनी भावनाएं, कहीं भी अपना सिद्धांत कहीं भी जाकर के छोड़ना नहीं चाहिए। ये आपकी पहचान बनती, और इसीलिए भारत देश की पहचान आध्यात्मिकता से, अहिंसा से विश्व के अंदर हुआ करती थी, और कभी भारत विश्व गुरु कहा जाता था। इसीलिए कि भारत की संस्कृति अपनी एक अलग संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, ऋषि मुनियों की संस्कृति है, तो इसलिए भारतीय संस्कृति का ही पालन होता है इन व्रतों के पालन से। तो मध्य मास मधु का शहद कभी मत लीजिए। किसी दवा के अंदर भी आपको पता चल रहा है इसमें शहद है तो उसको तुरंत छोड़ दीजिए। घर में माँ वगैरह बचपन में बताती थी कि बेटा, चाशनी के अंदर ये दवा लेना है। जब कोई बच्चों को निप्पल चूसने के लिए बचपन में लाते थे, उसके अंदर सुनते थे शहद होता है, और बच्चों को चूसने के लिए दे दिया जाता था। उस निप्पल के अंदर से भी शहद निकाल करके और पूरी तरह से उसको धुल करके, साफ करके, और फिर उसके अंदर चाशनी मीठी भर करके, तब हमारे घरों में उस निप्पल को बच्चों को दिया जाता था। ऐसी बारीकी के साथ हमारे माता पिता पहले बच्चों का लालन पालन करते थे। तो वो संस्कार हैं, उन्हीं संस्कारों के कारण आज आपके समाज के अंदर आचार्य शांति सागर महाराज जैसे महापुरुष ने जन्म लिया, ज्ञानमती माता जी जैसी महान आरिका ने जन्म लिया, कि माँ ने बचपन से ही किस प्रकार से धर्म की घूंटी पिलाई और उसके माध्यम से जाना गया कि हमें मध्य मास मधु का सेवन जीवन में कभी भी नहीं करना। ऐसे पांच उदंबर फल होते हैं, बड़, पीपल, पाकर, उमर, कठुमर प्राय लोग नहीं खाते हैं, लेकिन कई बार लोग अंजीर खाते हैं। अंजीर भी ये पंचोदम्बर में ही आती है और इनके अंदर त्रस जीवों का घात होता है, इसलिए इन चीजों का भी सेवन नहीं करना। तो 5 उदम्बर फलों का त्याग किया और 3 मकार का त्याग किया तो अष्ट मूल गुण की पालक बन गए। और अष्ट मूल गुण ये हमारी नींव है, मूल मूल माने जड़, गुणों की जड़ है। अगर हम जड़ को काट देंगे तो आगे के गुण तो कहाँ गए पता ही नहीं चलेगा। इसलिए सबसे पहले अपनी जड़ को मजबूत करना स्वयं, तो अष्ट मूल गुण के पालक मेरे जो स्वाध्यायी भाई बहन उनका तो सबका होगा ही, लेकिन अपने बच्चों के अंदर आपको अपनी आगे की पीढ़ी को भी धर्म के मार्ग पर लाना है। और केवल धर्म के मार्ग पर इसलिए नहीं कि हम पूजा पाठ करते हैं तुम भी करो, इस पर लाना है कि हमने पाप नहीं किए हैं तुम भी पाप नहीं करोगे, हम नरक त्रयंश योनि में नहीं जाएंगे आप भी नहीं जाओगे, तब जा करके यही उनके प्रति बड़ा उपकार होगा। लेकिन जो माताएं बहने कहती हैं बड़े आराम से कहती हैं, हाँ बेटा जो खाना है फास्ट फूड जाओ ले आओ खा लो, नहीं उन्हें रोकना। पहले शुरू शुरू में आप सप्ताह में एक दिन उनको त्याग कराओ कि आज आप कोई फास्ट फूड नहीं खाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे 10 लक्षण पर पूरे भादों के महीने में ऐसे उनको आप कदाचार से सदाचार से यानी दुराचरण से सदाचरण की ओर ले आएंगे, तब हमारी भारतीय संस्कृति पंचम काल के अंत तक जैन संस्कृति बची रहेगी बनी रहेगी। यही कह करके आज के स्वाध्याय का सार समझना कि पहले अष्टमूल गुणों को धारण करके फिर आगे के व्रतों की ओर बढ़ना। चलो द्वादशांग मयी जिनवाणी माता की जय।